तो सोचिए कि ये एक किताबों की दुकान है
जी
और उस दुकान में किताबों के बीच एक भूत भटक रहा है और ठीक उसी वक्त दुकान के दरवाजे के बाहर पूरा शहर मतलब गुस्से और दुख की आग में जल रहा है।
बिल्कुल, यही तो लुईस एल्ड्रिज की उपन्यास द सेंटेंस की दुनिया है।
हाँ, और आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्रेत बाधित दुकान की कहानी अमेरिका के सबसे मुश्किल सालों में से एक की कहानी बन जाती है।
और ये कोई आम कहानी नहीं है। लुईस एल्ड्रिज समकालीन अमेरिकी साहित्य की एक बहुत बड़ी आवाज है।
जी,
वो अपनी ओजीबवे और जर्मन अमेरिकी विरासत से कहानियां बुनती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास का जो केंद्र है, बिजबार्ट बुक्स नाम की दुकान,
हाँ,
वो असल में मिनियापोलिस में उनकी अपनी दुकान है।
अच्छा, तो इसमें हकीकत भी है।
हाँ, तो ये कहानी हकीकत और कल्पना के धागों से बुनी गई है। और ये उस एक साल को पकड़ती है, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच का वो तूफानी साल।
महामारी थी
और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हुए विद्रोह ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस कहानी की परतों को खोलें, समझें कि कैसे एक महिला का निजी संघर्ष एक शहर के सामूहिक दर्द से जुड़ जाता है और कैसे किताबें और कहानियां इस सब के बीच मतलब एक उम्मीद की किरण बनती हैं।
बिल्कुल, तो चलिए कहानी की मुख्य पात्र चुकी से मिलते हैं।
हाँ, जिसकी अपनी जिंदगी ही किसी सजा से कम नहीं थी।
चुकी एक ओजीबवे महिला है और उसका अतीत मतलब काफी उथल पुथल भरा रहा है। जब कहानी शुरू होती है तो वो बर्च पार्क बुक्स में काम कर रही है, लेकिन यहां तक पहुंचने का उसका सफर बहुत लंबा और दर्दनाक रहा है।
जवानी में वो नशे की आदि थी, है ना, और एक बहुत ही अजीब जुर्म में फंस गई थी।
हाँ, बहुत अजीबोगरीब।
अजीबोगरीब। जरा बताइए इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है यहीं से उपन्यास का जो शीर्षक है द सेंटेंस वो अपने मायने लेना शुरू करता है।
बिल्कुल, उसने अपने एक दोस्त की लाश चुराई थी।
क्या?
हाँ, ताकि वो उसके शरीर से ड्रग्स निकाल सके। ये एक ऐसा काम था जो हताशा के मतलब इंतहा को दिखाता है।
और इसकी कीमत?
बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, 60 साल की जेल की सजा।
60 साल? ये तो अविश्वसनीय लगता है, मतलब अमेरिकी न्याय प्रणाली पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है।
बिल्कुल, ये सजा उसकी जिंदगी पर एक पूर्ण विराम की तरह थी।
तो जेल के उन अंधेरों में उसने रोशनी कैसे ढूंढी?
रोशनी उसे मिली किताबों में।
अच्छा,
जेल के एकांत में जब दुनिया से उसका नाता टूट चुका था, तब किताबों ने उसका हाथ थामा। उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वो खुद को फिर से खोजने लगी। जेल में ही उसने अपनी मातृभाषा ओजीबवे सीखी, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ी। तो किताबें सिर्फ वक्त काटने का जरिया नहीं थी,
वो उसकी जीवन रेखा बन गई।
हाँ, जीवन रेखा बन गई। उन्होंने उसे एक नई पहचान दी, एक नया जीवन दिया।
तो यहाँ उपन्यास का शीर्षक द सेंटेंस अपने दोहरे अर्थ के साथ चमकता है।
जी,
एक तरफ है जेल की सजा, अ प्रिजन सेंटेंस,
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ है एक किताब का वाक्य, अ लिटरेरी सेंटेंस। एक ने उसे कैद किया तो दूसरे ने उसे आजाद किया।
क्या बात है।
लेकिन असल दुनिया में वो अकेली नहीं है, उसका एक सहारा है, उसका पति पॉल्क्स।
हाँ,
पर उनके रिश्ते में भी एक अजीब सा पेच है, है ना?
हाँ, बहुत गहरा पेच है। पॉल्स एक पूर्व आदिवासी पुलिस अधिकारी है।
अच्छा,
और विडंबना देखिए कि सालों पहले उसी ने टुकी को गिरफ्तार किया था।
अरे
जी, तो उनका रिश्ता अपराध बोध, पश्चाताप और बहुत गहरे प्रेम का एक जटिल मिश्रण है। पॉल्क्स टुकी को बेनतहा प्यार करता है, लेकिन उनके बीच हमेशा अतीत की वो एक घटना एक छाया की तरह मौजूद रहती है।
ये तो किरदारों की बहुत दिलचस्प बुनावट है। और इस दुकान की दुनिया में एक और किरदार है जो कहानी को एक अलौकिक मोड़ देता है, फ्लोरा।
फ्लोरा,
ये कौन है? क्या वो बस एक मजाकिया किरदार है या उसकी कहानी में कुछ और भी है?
फ्लोरा दुकान की सबसे क्या कहें परेशान करने वाली ग्राहक थी, एक श्वेत महिला जो खुद को मूल निवासी साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी।
मतलब जिसे वॉना भी कहते हैं।
बिल्कुल, उपन्यास में उसे यही कहा गया है। वो दूसरों की पहचान को ओढ़कर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। और कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ऑल सोल्स डे के दिन फ्लोरा की मृत्यु हो जाती है
और उसकी आत्मा
दुकान में भटकने के लिए लौट आती है।
तो भूत की कहानी यहीं से शुरू होती है। पर ये अजीब है, दुकान में इतने सारे लोग हैं पर वो भूत सिर्फ टुकी के पीछे ही क्यों पड़ जाता है?
क्योंकि शायद टुकी उसे सबसे ज्यादा महसूस कर पाती थी। फ्लोरा की मौत के बाद दुकान में अजीब चीजें होने लगती हैं।
जैसे?
किताबें अलमारियों से गिरती हैं, बच्चों के सेक्शन से फुसफुसाहटें आती हैं, और ये सब टुकी को सबसे ज्यादा परेशान करता है।
तो ऐसा लगता है जैसे फ्लोरा की आत्मा टुकी से कुछ कहना चाहती है या शायद उससे कुछ छीनना चाहती है।
हाँ, वो टुकी के जीवन में ठीक वैसे ही घुसपैठ कर रही है जैसे वो जीते जी दूसरों की संस्कृति में करती थी।
तो एक तरफ दुकान के अंदर एक भूत का साया है और फिर अचानक बाहर की दुनिया में एक और तरह का भूत आ जाता है, महामारी का।
बिल्कुल।
लेखिका ने इन दोनों तरह के कैद के बीच क्या कोई गहरा संबंध बनाया है?
बहुत गहरा। जैसे ही फ्लोरा का भूत ज्यादा ताकतवर होने लगता है, कोविड-19 के कारण शहर में लॉकडाउन लग जाता है,
दुकान बंद हो जाती है।
हाँ, बर्चबाग बुक्स को अपने दरवाजे बंद करने पड़ते हैं और ये एकांत टुकी के लिए दोहरी मार जैसा है। एक तो वो दुकान में भूत के साथ अकेली है
और दूसरा ये लॉकडाउन उसे जेल की याद दिलाता है।
बिल्कुल, व्यक्तिगत और सामूहिक कैद की भावनाएं मतलब एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं।
ये कल्पना करना भी मुश्किल है, वो एक कैद से निकलकर आजाद हुई थी और अब पूरी दुनिया ही एक कैद खाना बन गई थी।
बहुत ज्यादा। और इस अकेलेपन में फ्लोरा का भूत सिर्फ एक आत्मा नहीं रहता, वो एक प्रतीक बन जाता है।
किस चीज का प्रतीक?
वो उस बेचैनी का प्रतीक है जो हवा में फैली हुई है, वो उस सांस्कृतिक अतिक्रमण और उन अनसुलझे ऐतिहासिक घावों का प्रतीक है। और फिर जब शहर इस महामारी से जूझ रहा होता है
तब एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है।
हाँ,
आप 25 मई 2020 की बात कर रहे हैं, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या।
जी,
यह घटना जो दुकान से कुछ ही मील की दूरी पर हुई, कहानी के मिजाज को कैसे बदल देती है?
ये कहानी के केंद्र में आ जाती है। महामारी का डर अब दुख, निराशा और गुस्से के एक भयानक तूफान में बदल जाता है।
शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं।
हाँ, सड़कें भर जाती हैं, आगजनी होती है। दुकान के अंदर का अलौकिक डर अब बाहर की दुनिया के वास्तविक और क्रूर डर से जुड़ जाता है।
टुकी पर इसका क्या असर पड़ता है? उसे तो न्याय प्रणाली ने पहले ही इतना बड़ा जख्म दिया था।
ये उसके पुराने घावों को फिर से हरा कर देता है। उसे लगता है कि जिस सिस्टम ने उसे 60 साल की सजा दी, वही सिस्टम आज भी सड़कों पर लोगों की जान ले रहा है।
और पोल्क्स, एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर, वो इस स्थिति को कैसे देखता होगा?
सबसे मुश्किल स्थिति में वही फंस जाता है।
एक तरफ उसकी पत्नी और दूसरी तरफ उसका अपना अतीत।
बिल्कुल, वो एक गहरे अंतर्द्वंद से गुजरता है। वो प्रदर्शनकारियों के दर्द को समझता है, लेकिन वो पुलिस में अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ सकता।
तो उपन्यास ये दिखाता है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक हमेशा आपस में जुड़े होते हैं।
हमेशा। दुकान के अंदर का भूत और शहर की सड़कों पर जलती आग, दोनों एक ही कहानी के हिस्से हैं, अन्याय और अनसुलझे अतीत की कहानी।
और इस दोहरे कहर के बीच ये लोग समाधान कैसे ढूंढते हैं, खासकर फ्लोरा की आत्मा से छुटकारा कैसे मिलता है?
उनका तरीका उतना ही अनूठा था जितनी ये कहानी है। फ्लोरा की मौत के ठीक एक साल बाद, अगले ऑल सोल्स डे पर, दुकान के सभी कर्मचारी मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए एक समारोह करते हैं।
कोई झाड़ फूंक नहीं?
नहीं, वो समझ जाते हैं कि इस भूत को भगाने से काम नहीं चलेगा, उसे समझना होगा, उसकी कहानी को सुनना होगा।
यानी समाधान हिंसा से नहीं बल्कि सहानुभूति और कहानी से आता है।
बिल्कुल, ये साहित्य की अपनी शक्ति पर एक विश्वास जैसा है।
वो करते क्या है उस समारोह में?
वे फ्लोरा को उसी की कहानी सुनाते हैं, उसके अकेलेपन को, उसकी पहचान की अधूरी खोज को और उसकी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और फिर टुकी सीधे उसकी आत्मा से बात करती है।
और क्या कहती है?
वो उसे फटकारती नहीं, बल्कि एक तरह की समझदारी और दृढ़ता से उसे शांति का मार्ग दिखाती है। वो फ्लोरा से कहती है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा।
और क्या ये काम करता है?
हाँ, ये काम करता है। समारोह के बाद फ्लोरा की उपस्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।
दुकान फिर से शांत हो जाती है।
लेकिन टुकी का जीवन वो इस एक साल के अनुभवों से हमेशा के लिए बदल चुका है। भूत चला गया है पर उसके सबक रह गए हैं।
तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद अगर हम इसके गहरे विषयों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इतिहास के भूतों के बारे में है ना?
निश्चित रूप से। उपन्यास का सबसे बड़ा विषय यही है, इतिहास और स्मृति का साया, कैसे अतीत हमारे वर्तमान पर हावी रहता है,
चाहे वो टुकी का व्यक्तिगत अतीत हो
या फिर अमेरिका का नस्लीय हिंसा का लंबा और दर्दनाक इतिहास। कहानी बताती है कि हम इन भूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें उनका सामना करना ही पड़ता है।
और सामना करने का तरीका है कहानियां।
जी,
ये दूसरा बड़ा विषय है, कहानियों और भाषा की शक्ति। जैसा हमने देखा, किताबों ने टुकी की जान बचाई और अंत में भूत से छुटकारा भी एक कहानी सुनाकर ही मिलता है।
बिल्कुल, ये उपन्यास इस बात पर जोर देता है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे हमें जोड़ती हैं, हमें ठीक करती हैं।
फ्लोरा के किरदार के जरिए लेखिका पहचान और सांस्कृतिक अतिक्रमण पर क्या कहना चाहती हैं?
उपन्यास ये बहुत साफ दिखाता है कि पहचान कोई पोशाक नहीं है जिसे पहना या उतारा जा सके। फ्लोरा की समस्या ये थी कि वो बाहरी प्रतीकों को अपनाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उस संस्कृति के इतिहास और दर्द को समझने की कोशिश नहीं की।
सच्ची अपनेपन की भावना दूसरों से कुछ छीन कर नहीं मिलती।
और अंत में न्याय का सवाल। किताब इसे दो स्तरों पर देखती है, व्यक्तिगत अन्याय और व्यवस्थागत अन्याय।
हाँ, और उपन्यास इन दोनों को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। वो दिखाता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है।
चुकी को मिली सजा और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या,
दोनों एक ही बीमार प्रणाली के लक्षण हैं।
और उपन्यास ये उम्मीद जगाता है कि न्याय की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जानी चाहिए।
ये उपन्यास हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत उपचार और सामाजिक न्याय एक दूसरे से अलग नहीं है। खुद के घावों को भरने की प्रक्रिया समाज के घावों को भरने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। और ये भी कि अपने भूतों से छुटकारा पाने के लिए, चाहे वे व्यक्तिगत हो या ऐतिहासिक, हमें पहले उनकी कहानियों को हिम्मत से सुनना और समझना पड़ता है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।